नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेंगे। बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू श्रमिक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय नेताओं को चेतावनी दी, कहा अगर यूरोप वहां सुरक्षा मजबूत नहीं करेगा तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। फिलीपींस में कचरे के ढेर में गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 27 लापता। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग आज शाम से नवी मुंबई में शुरू होगी। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि वो अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान वो नई दिल्ली एआई इंपैक्ट समिट में शामिल होंगे। कल डिप्लोमेटिक कोर को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस एआई एक्शन समिट में की थी और ये 19-20 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाला है। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के विदेश मंत्री जियान नोएल बेरोट के साथ बैठक के दौरान बताया था कि भारत जल्द ही राष्ट्रपति मैक्रों के आने की उम्मीद कर रहा है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय हैं, वे बहुध्रुवीयता के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका एक साथ काम करना न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति को स्थिर करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में फ्रांस के राजदूतों के सम्मेलन को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, संसाधन और संपर्क से प्रेरित समकालीन वैश्विक परिवर्तनों पर चर्चा की। उन्होंने बहुध्रुवीयता, रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में भारत फ्रांस साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में पुलिस ने मयमनसिंह में भालुका में हिंदू श्रमिक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अब्दुल्ला अल मामून ने बताया कि मयमनसिंह पुलिस ने बुधवार दोपहर ढाका के डेमरा से इमाम यासीन अराफात को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय यासीन ने 18 दिसंबर को भीड़ द्वारा किए गए हमले को भड़काने और उसका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि यूरोपीय नेताओं को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के रुख को गंभीरता से लेना चाहिए। श्री वेंस ने कहा कि वैश्विक मिसाइल रक्षा के लिए ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण है क्योंकि शत्रु देश इस क्षेत्र में रुचि दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी कि अगर यूरोप वहां सुरक्षा मजबूत नहीं करता है तो अमेरिका वहां पर कार्रवाई करने के लिए विवश हो सकता है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से मिलकर इन चिंताओं पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की है कि वह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके लिए सैन्य बल का उपयोग भी संभव है और आर्कटिक क्षेत्र में दुश्मनों को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की भी कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि गठबंधन अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि उनके दबाव ने नाटो के सदस्यों को रक्षा खर्च को जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के लिए मजबूर किया। उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं जब यूरोपीय नेताओं ने ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप की नई टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को सामूहिक रूप से निपटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमेरिका के वित्त विभाग ने हरित जलवायु कोष GCF से तत्काल वापसी की औपचारिक घोषणा की है। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और गठबंधनों से वाशिंगटन की वापसी की घोषणा के ठीक एक दिन बाद आई। अमेरिका के वित्त सचिव स्टॉक बेसेंट ने कहा कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं से ट्रंप प्रशासन के व्यापक बदलाव को दर्शाता है और उन्होंने इस फंड को अमेरिका की प्राथमिकताओं के साथ असंगत बताया। जीसीएफ विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने संयुक्त राष्ट्र के कई संगठनों से अमेरिका के अलग होने के फैसले पर खेद व्यक्त किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डोजारिक ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सदस्य देशों पर इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बजट को वित्त पोषण करने की कानूनी दायित्व है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठन सदस्य देशों द्वारा दिए गए जनादेशों को दृढ़तापूर्वक लागू करना जारी रखेंगे। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला में कैद बड़ी संख्या में वेनेजुएला के नागरिकों और विदेशियों को रिहा किया जाएगा। वेनेजुएला के नेशनल असेंबली के प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज ने आज इसकी घोषणा की, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किन लोगों को रिहा किया जाएगा या कितने लोगों को रिहा किया जाएगा। फिलीपींस में कचरे का ढेर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 27 अन्य लापता हैं। पुलिस बल, दमकल और आपदा राहत कर्मियों ने कल दोपहर सेबू शहर के बिनालिव गांव में कचरे के ढेर में फंसे 8 लोगों को बाहर निकाला। 27 लापता लोगों की तलाश की जा रही है और घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। ईरान में वर्ष 2022 के बाद से ही अशांति है। प्रदर्शन के 13 दिन हो चुके हैं। रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई के विरोध में शुरू हुए ये प्रदर्शन अब अधिकारियों के लिए राजनीतिक चुनौती बन गई है। तेहरान, इस्फहान और पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी ईरान के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़पें हुई हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार इन झड़पों में 39 लोग मारे गए हैं और 2000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। हाल के घटनाक्रम में निर्वासित युवराज रजा पहलवी के आह्वान पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के एक दल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि मुलाकात में भारत में स्वतंत्र जीपीयू के विकास और डीजीएक्स स्पार्क जैसे तीव्र उपकरण के निर्माण पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रणाली 200 अरब पैरामीटर तक के मॉडल के लिए सुरक्षित परिणामों के साथ एक पेटाफ्लॉप तक का प्रदर्शन प्रदान करता है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस कॉम्पैक्ट जीपीयू को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है और ये रेल, जहाजरानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूरस्थ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। सीरिया में सेना ने निवासियों को इलाका खाली करने का आदेश देने के बाद अलेप्पो से कुछ हिस्सों में नए हमले किए। सीरियाई सेना ने कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर कुर्द बहुसंख्यक क्षेत्रों का इस्तेमाल हमला करने के लिए करने का आरोप लगाया है, क्योंकि संघर्ष तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। इस लड़ाई ने हजारों नागरिकों को बेघर कर दिया है और कई लोगों की जान ले ली है और उन्हें घायल भी कर दिया है। एसडीएफ ने कहा है कि उनके लड़ाके अलेप्पो के सीरियाई इलाके के पास दमिश्क समर्थित गुटों और सहायक बलों के साथ भीषण झड़पों में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें भारी नुकसान भी पहुंचाया है। महिला प्रीमियर लीग WPL का चौथा संस्करण आज से शुरू होगा। पहला मुकाबला आज नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। भव्य उद्घाटन समारोह के बाद ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु क्वालालंपुर मलेशिया ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उनका मुकाबला आज जापान के अकाने यामागुची से होगा। वहीं पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का जोड़ी का सामना इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले महीने नई दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। बांग्लादेश पुलिस ने हिंदू श्रमिक दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोपीय नेताओं को चेतावनी दी, कहा अगर यूरोप वहां सुरक्षा मजबूत नहीं करेगा तो अमेरिका कार्यवाही करने के लिए मजबूर होगा। फिलीपींस में कचरे का ढेर गिरने से एक व्यक्ति की मौत और 27 लापता। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग आज शाम से नवी मुंबई में शुरू। पहले मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।